तैयार करदा इमी कैसे घर कैसी और सिटी मिलने का पता नो फरमाले इमी कैसे घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची फोन नंबर 6822999 मोबाइल 0333217940
कि नमाज में इसने जब दाएं तरफ को सलाम फेरता हूँ तो मुझे इसका यकीन नहीं होता कि बाएं तरफ भी सलाम फेर सकूंगा। ये जिंदगी ऐसी गैर यकीनी है और मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो यकीनी है, हमेशा की है और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और उस लामहदूद जिंदगी की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इस दुनिया के मुख्तसर और गैर यकीनी जिंदगी पर ही है। जो इस दुनिया में अल्लाह को राजी करके जाएगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके में जिंदगी गुजार के जाएगा, अल्लाह को इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत की हमेशा वाली जिंदगी में भी कामयाब करेंगे। और असल मसला तो है ही आखरत का, यहाँ रहना ही कितना है। यहाँ की तो खुशियां भी आरजी है और गम भी आरजी है, यहाँ की राहतें भी आरजी है और तकलीफें भी आरजी है। थोड़ी सी दुनिया है, मसाइल भी थोड़े थोड़े ही हैं। आखरत हमेशा की है इसलिए वहां के मसले भी तवील हैं। बाकी मसले भी तवील हैं। या दुनिया में किसी को भूख लगे तो दो रोटी के खाने से भूख मिट जाया करती है, भूख खत्म हो जाती है। प्यास लगे तो गर्मी के मौसम में बहुत से बहुत दो या तीन गिलास पी लो तो प्यास बुझ जाती है। क्योंकि जरूरतें थोड़ी थोड़ी है और थोड़ी सी चीजों से ये जरूरतें पूरी भी हो जाती है। लेकिन आखिरत की जिंदगी जो है वहां की जरूरतें भी तवील है, लंबी है और वो थोड़ी चीजों से पूरी भी नहीं होती। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर आखिरत की जिंदगी में किसी को भूख लगी तो जितनी दुनिया की जमीन है इसकी रोटी बना दी जाए और सारे समंदरों का सालन बना दिया जाए तो आखिरत के भूखे की भूख को नहीं मिटाया जा सकता। वो तो अल्लाह हज़रत ही अपने अहकामात पे चलने वाले के लिए पहले ही दिन मछली के जिगर के कबाब खिला के इसकी भूख को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अब ये जन्नत में नेमतें खाए गए ये भूख को मिटाने के लिए नहीं बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए खाए गए। और अल्लाह न करे अगर आखिरत की जिंदगी में किसी को प्यास लगी तो दुनिया के सारे दरिया, सारे नहरें, सारे तालाब, सारे कुओं का पानी पिला दिया जाए तो आखरत के प्यासे की प्यास को नहीं बुझाया जा सकता। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले ही दिन जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे हाथों से जामे कौसर पिला के इसकी प्यास को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अब जन्नत पे जो ये मशरूबात पिएगा तो प्यास को बुझाने के लिए नहीं पिएगा बल्कि लज्जत को हासिल करने के लिए पिएगा। तो ये तो दुनिया थोड़ी सी है, इसके मसाइल भी थोड़े से हैं। बहुत से बहुत सारी जिंदगी तकलीफ में गुजरी तो इतना ही होगा ना कि तकलीफों से तंग आके आदमी मर जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां तो मौत को भी मौत आ जाएगी, आखिरत में तो मौत को भी मौत आ जाएगी। अब जो कैफियत आ गई वो अब हमेशा की। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, इस दुनिया में फूक फूक के कदम उठाना चाहिए, फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। कोई अल्लाह का हुक्म ना टूट जाए, कोई अल्लाह का हुक्म ना टूट जाए। यहां के एक एक लम्हे की कीमत है। इतनी जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी चीज का सदमा और अफसोस नहीं होगा। कोई हसरत नहीं होगी सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह की याद के बगैर गुजरे। जन्नत हसरत की जगह नहीं, अफसोस की जगह नहीं, कोई हसरत नहीं होगी सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह की याद के बगैर गुजरे। इसलिए हर लम्हे को कीमती समझें। जो लम्हात हमारी जिंदगी में गुजर गए अब वो क़यामत तक वापस नहीं आ सकते। कल की जुमरात गुजर गई, अब क़यामत तक ये दिन वापस नहीं आएगा। कल हफ्ते का दिन पता नहीं जिंदगी में आता है या नहीं आता, कुछ पता नहीं है। जो आज के ये दिन है इसी को गनीमत समझ लें। आज का दिन, जो दिन गुजर गया वो गया, अब वापस नहीं आ सकता। आने वाले दिन का पता नहीं कि आएगा भी कि नहीं आएगा। जो आज का दिन है आदमी इसी को गनीमत समझे और यूं कहे कि अभी से करना है, अभी से, अभी से। शैतान जिंदगी की बड़ी लंबी लंबी ऊंदे बंधवा देता है। जुबान से तो कहते हैं कि एक दिन मौत का आना है, पत्नी कब आ जाए, लेकिन अंदर में होती है कि अभी तो नहीं आएगी, अभी तो नहीं आएगी, अंदर में ये होती है। ये जबान के बोल होते हैं कि पता नहीं मौत किसी वक्त भी आ जाए। जिसके अंदर के ये बोल बन जाए वो तो हर वक्त मरने के लिए तैयार रहेगा, हर वक्त, हर वक्त। कि अभी अगर बुलावा आ जाता है तो मैं लबैक कहूं कि हाजिर हूं अल्लाह। ये हाजिर कौन कहेगा जिसकी तैयारी हुई हुई है। और तैयारी वो आमाल जो मरने के बाद काम आते हैं, वो आमाल। अब में से हर आदमी सोच ले कि अगर अभी मेरा बुलावा आ जाता है तो मेरी तैयारी है। हर आदमी अपने बारे में सोचे मेरी तैयारी है, उन आमाल का जखीरा है जो मरने के बाद ही जिसकी जरूरत पड़ेगी। वहां की करेंसी पैसा नहीं है, वो आमाल, आमाल। और वहां बोलने चलेंगे अमल की कीमत लगेगी, बोलनी चलेंगे। जब आदमी कब्र में जाता है तो सबसे पहले उससे तीन सवाल होते हैं मुनकर नकीर कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, रब कौन, पालने वाला तुम्हारा कौन है। अब वहां इल्म नहीं चलेगा, अमल चलेगा। यहां तो रब के रब होने पे ढाई घंटे का आदमी बयान कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ वाकई अल्लाह को रब माना है कि मेरा पालने वाला अल्लाह है, हर तरफ से निगाह हटा के उस पर लगाई है, और अगर हम अपने दिलों को टटोले तो आज अल्लाह के गैर को ही रब बनाया हुआ है। किसी ने दुकान से पलने का यकीन बनाया, किसी ने नौकरियों से पलने का यकीन बनाया, किसी ने ओहदे और मनसब से पलने का यकीन बनाया, किसी ने ज़रात से पलने का यकीन बनाया। हालांकि पालने वाली जात एक अल्लाह बुजुर्ग की है। जब वो किसी के पालने का इरादा फरमा लेते हैं तो बगैर सारे असबाब के भी पाल के दिखा देते हैं, सारे असबाब पाल के दिखा देते। और जब किसी के पलने का फैसला उठा लेते हैं तो सारे असबाब होके भी वो नहीं पल सकता। एक बादशाह था, उसके खजाने थे। पहले ये बादशाहों का जौक था खजाने बनाना, कीमती जवाहरात और हीरे ये सब चीजें रखते थे, पत्थर। उसकी चाबी एक उसके पास थी और एक उसके वजीर के पास थी। जब कभी दिल घबराता तो अपने खजाने को जाके देखता। आदमी को जिससे मोहब्बत हो उसको देख के इत्मीनान मिला करता है, औलाद से मोहब्बत हो परेशानी में औलाद सामने आ जाए तो परेशानी दूर हो जाती, और जिसको चीजों से मोहब्बत हो उन चीजों से परेशानी दूर होती है। एक रात उसको नींद ना आई, बेचैन था, तो वो उठ के गया खजाने में और जाके अपने खजाने को देख रहा था। اس دوران میں وزیر بھی اٹھا, اس کو کسی تقاضے پہ کسی ضرورت تھی, اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے, سمجھا کہ شاید بند کرنا میں ہی بھول گیا ہوں, تو اسے باہر سے بند کر دیا. اب دروازہ بند, اندر سے کھلنے کا کوئی راستہ نہیں. اب یہ جب فارغ ہوئے اس کی سیر و تفریح سے خزانوں کی, اب باہر آئے تو دروازہ بند, اندر سے کھل نہیں سکتا تھا, باہر سے ہی کھل سکتا. اب بتیرا شور مچایا, کوئی سننے والا نہیں, تہ خانے میں خزانہ وہاں کس کی آواز جائے. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, کوئی کھولنے والا نہیں. آدمی بھوکا پیاسا اتنا ہی زندہ رہ سکتا ہے. جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو کوئی شکل نہیں ہے بچنے کی, تو اس نے کاغذ اور پینسل اٹھائی اور اس پہ لکھا کہ اگر یہ خزانے کسی کو پال سکتے تو آج ان خزانوں کے باوجود بھی میں یوں بھوکا پیاسا نہیں مرتا. تین دن بعد جب ملک کے قانون کے مطابق بادشاہ سلامت کی سارے ملک میں تلاش ہو گئی, جب پتہ نہیں چلا تو صاحبزادے کو بادشاہ بنایا گیا, ولی عہد کو, اور گدی پہ بیٹھا کے جب تاج پوشی ہوئی تو اس پہ سارے خزانوں کا چارج دینا پڑتا ہے. تو وزیر صاحب صاحبزادے کو لے کے خزانے کا حساب دینے کے لیے لائے, دروازہ کھولا تو اندر بادشاہ سلامت کی لاش پڑی ہے, اور پاس یہ پرچہ ہے کہ اگر یہ خزانے ہی کسی کو پال سکتے تو آج میں یہ بھوکا پیاسا نہیں مرتا. تو اس دل کے اندر میں اتری بھی ہو کہ پالنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں پال سکتا. مال کے ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ آدمی کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. یہ ذہن کہ پیسہ ہوگا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی, یہ خیال ہے, خیال ہے. ضرورتیں تو اس وقت پوری ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں, اللہ رب العزت چاہتے ہیں, ورنہ چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آدمی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اگر یہ یقین اندر کا بنا ہوا ہے تو قبر میں کہہ سکیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. وہ علم نہیں چلے گا, عمل چلے گا. اس لیے کہا ہے دنیا میں اللہ کے ہونے کو اتنا کہیں, اتنا کہیں, اتنا کہیں کہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے, نکل جائے. اور یہ دو چار دفعہ کے بول سے اللہ کا غیر نہیں نکلتا, دو چار دفعہ کے بول سے نہیں نکلتا. بقول کسی اللہ والے کی کہ اس دل کے اوپر تو اللہ سے ہونے کی بمباری کرنی پڑتی ہے جب یہ اندر سے اللہ کا غیر نکلتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی ضرب اس پہ لگائی جائے قلب پہ کہ اللہ کا غیر اس دل سے نکل جائے. تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی, دونوں جگہ. تنہائیوں میں کلمے کی کثرت سے اللہ پاک کے ذات عالی کے ہونے کے یقین کو پیدا کریں, اور مجمع میں اللہ سے ہونے کو کہہ کے اس یقین کو پختہ کریں. یہ دونوں جگہ اس کی ضرورت ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے, وہاں بھی تقریر نہیں چلے گی. یا تو اسلام کے اوپر پانچ پانچ گھنٹے کے لیکچر دلوا لو, آدمی دے دے گی. وہاں اگر زندگی دین کے مطابق گزاری ہے, زندگی دین کے مطابق گزاری ہے, صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک, اور گھر کی زندگی اور بازار کی زندگی اور دفتر کی زندگی اور معاشرت کی زندگی سب دین کے مطابق گزاری ہے, تو کہہ سکیں گے کہ میرا دین اسلام ہے. اس لیے عمل کی ضرورت ہے, عمل. تیسرا سوال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت دکھائی جائے گی کہ پہچانتے ہو کون, وہاں وہی پہچان سکے گا جس کی زندگی پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ گزری ہوگی, وہ کیسے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر شعبے میں کیا ہوگا, صرف عبادات میں نہیں, عقائد میں بھی, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اخلاق میں, پانچوں چیزوں میں, کیونکہ ان پانچ چیزوں سے مل کے ہی دین بنتا ہے. دین ان پانچ چیزوں سے مل کے بنتا ہے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. اب جس کی زندگی ان پانچوں کے مطابق ہے تو کہہ سکے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو, اس زندگی میں, اس زندگی میں آدمی کوشش کر لے کہ اپنی ترتیب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کے مطابق گزار لے, زندگی میں کوشش کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع با موقع ایسی باتیں ارشاد فرما گئے جس پہ چل کے آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول وسلم کے طریقے پہ گزار سکتا. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان باتوں کو, میں چند باتیں کہتا ہوں, ان کو یاد کر لے اور اس پہ عمل کرے. صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, دعوت کی کہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے, اور پہنچانا بھی کافی نہیں, اور اس کو پہنچا کے ان کو اس پہ عمل کرنے پہ تیار کریے. چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی مجمع میں کہ ہے تم میں سے کوئی جو میں باتیں کبھی کہوں اس پہ اس کو یاد کرے, پھر اس پہ عمل کرے, پھر تیسری چیز اس کو دوسروں تک پہنچائے. جو ختم نبوت کی وجہ سے ہر امت کی زندگی کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سارے عالم تک پہنچانا, اس ذمہ داری کو آپ نے بتایا کہ دوسروں تک پہنچائے اور ان کو اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار کرے. ہے تم میں سے کوئی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس کے لیے. یہ صحابہ ہی کی شان تھی کہ جو حضور ارشاد فرماتے اس پہ لبیک کہتے ہیں. یا رسول اللہ میں تیار ہوں ان چاروں چیزوں کے لیے کہ میں اس کو یاد بھی کروں گا اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی اور ان کو عمل کرنے پہ تیار کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پہ گن کے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں, انگلیوں پہ گن کے. اور یہ پانچوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ ہماری زندگی آ جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد جامع ہوتا ہے, جامع. ایک آپ کا جملہ بہت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وہ یہ کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ, حرام چیزوں سے بچ جاؤ, حرام کاموں سے بچ جاؤ تو دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ. آپ نے وظائف نہیں بتایا, اعمال کا. حرام کاموں سے بچ جاؤ, حرام کاموں سے بچ جاؤ تو دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے چند نوافل کو, اذکار کو اور باقی چیزوں کو ہی کل سمجھ لیا. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو, اس کی طرف سے شیطان نے نگاہیں ہٹا دی. شیطان نے نگاہیں کہ فرائض اور واجبات کے بعد, فرائض اور واجبات کے بعد سب سے ضروری چیز حرام چیزوں سے بچنا ہے, جس کو اللہ نے منع کیا, جس کو اللہ نے روکا ہے, ان سے بچنا ہے. تو سب سے زیادہ محنت اس کی, سب سے زیادہ محنت اس کی. اس لیے اگر ان چیزوں سے نہیں بچ رہے اور نوافل جتنے نفل اعمال ہیں ان میں لگ رہے ہیں, تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی گرمی کے موسم میں کمرے میں ایئر کنڈیشن کو چلا دے ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کھڑکیاں اور دروازے کھول دے, तो बाहर की गर्म हवाएं उस कमरे को ठंडा नहीं होने देंगे, सब निकल जाएंगे ठंडा। ऐसे आदमी नफली चीजों के एयर कंडीशन चला दे और हराम की खिड़कियां दरवाजे खोल दे तो क्या करेंगे ऐसे नवाफिल? इससे बचना जरूरी, और हर चीज में इससे बचना जरूरी, सिर्फ खाने में ही नहीं, सिर्फ खाने में नहीं बल्कि हर चीज में। एक लुकमा हराम कमाई का, एक लुकमा हराम कमाई का 40 दिन की दुआओं की कबूलियत को रोक देता है। एक लुकमा 40 दिन की दुआओं की कबूलियत को रोक देता है। सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा भूख की शिद्दत में एक लुकमा खाया था और बाद में पता चला कि ये सही नहीं था, तो पानी पी पी के गले में उंगलियां डाल डाल के उसको बाहर निकाला, इसके एक दाना भी अंदर ना रह जाए, एक दाना भी अंदर ना। तो उम्र शैतान इससे निगाह को काफिल कर देता है और आदमी फिर मुख्तलिफ चीजों में फंस जाता है। इसी तरीके से और जो गैर गलत चीजें, बदगुमानी, दिल में आदमी किसी के बारे में कोई चीज राय कायम करके बैठ जाएगी, इसने तो मेरे बारे में यूं कहा होगा, ऐसा किया होगा, ये भी ऐसे ही गुनाह है जैसे और। अब इस बदगुमानी के साथ कैसे अल्लाह की मदद साथ हो? हमें तो हुक्म यही कि अगर कोई चीज देखो भी तो अच्छा गुमान कायम कर लो, न कि बदगुमानी, किसने यूं कहा होगा, यूं मेरे बारे में किया होगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तभी कहा कि इस दिल को सबकी तरफ से साफ कर लो, दिल को सबकी, झूठ है, गलत बयानी, अल्लाह किया झूठ इतना ज्यादा नापसंदीदा, इतना ज्यादा नापसंदीदा कि जब इंसान की जबान से कोई गलत झूठ बोल निकलता है तो जो नेकी उठाने वाले फरिश्ते हैं वो कई मील दूर उससे चले जाते हैं कि उस बोल में इतनी बदबू होती है कि फरिश्ते करीब नहीं आते। एक गलत बोल, एक गलत बोल, तो आदमी झूठ से तौबा करे। ये चुड़िया के गोश्त की तरह लजीज तो लगता है लेकिन आदमी को तबाह कर देता। गीबत जो आज मजालिस की जीनत बन गई, इससे ये हराम है, इससे बचना। हज़रत शेख अल-हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमजान में ग़ालिबन लिखा है ना कि शबे कदर में सारी रात इबादत की और सुबह होते किसी की गीबत कर दी तो रात भर की इबादत पे पानी फिर गया। और कुरान पाक में जितने सख्त अल्फाज गीबत के बारे में कहे हैं शायद किसी और चीज के बारे में नहीं कहे, जिसको इतना हल्का समझ लिया गया, इतना हल्का समझ लिया कि गीबत से बचो, कि ये ऐसे ही बुरा है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। इंसानों में वो सबसे गिरा हुआ इंसान जो किसी मुर्दार को खाए, और वो मुर्दार भी वो जो उसका भाई है। इंसान का गोश्त खाना बुरा तो उसने मुर्दे का, तो उसने भी अपने भाई का। गीबत से बचो, और गीबत क्या है? किसी के पीठ के पीछे ऐसी बात कहना कि उसको पता चले कि मेरे बारे में ये कहा गया और उसको बुरी लगे, तो ये गीबत है, चाहे वो बात वाकईतन उसके अंदर मौजूद हो, ये गीबत है, वाकईतन उसके अंदर मौजूद। पूछा गया कि अगर वो बात उसके अंदर वाकईतन मौजूद है, फरमाया तभी तो गीबत है, अगर नहीं है फिर कहीं ये तो बहतान है जो और दूसरा गुनाह है। बाद अपने आदमी इतनी बात को वजन रखने कहता है कि मैं गीबत थोड़ी करे उनके मुंह पे भी कह सकता हूँ। और हमारे लिखा है कि मुंह पे भी ऐसी बात कहना कि आदमी को बुरी लगे ये भी गीबत के हुक्म में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मेराज में बुलाया तो लोगों के अहवाल दिखाए, आपने कुछ लोगों देखा कि अपने नाखूनों से चेहरे का गोश्त नोच रहे हैं, तो आपने पूछा ये कौन है, कहा आपके उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों की गइबत करते हैं। हर शख्स को जन्नत में जाने के लिए एक पुल से गुजरना पड़ेगा और वो पुल जहन्नुम पे से गुजरता है। जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले अल्लाह के फरमाबरदार होंगे वो तो तेजी से उस पुल पे से गुजर जाएंगे, और जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले हैं उस पुल से गुजरेंगे तो उनको खींच खींच के जहन्नुम में डाला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उस पुल पे चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, वहीं रोक लिया जाएगा, चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, वहीं रोक लिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि वापस जाओ दुनिया में, और उन लोगों से जिनके तुमने गीबत की थी उनसे माफी मांगो, इस गुनाह को माफ करा के आओ तो तुम्हें पुल पे चढ़ा जाए, चढ़ने दिया जाएगा। मेरे नहीं दोस्तों में तुम्हें एक आदमी को चढ़ने दिया जाए तो कुछ तो उम्मीद होती है कि गिरता पड़ता कहीं पार कर जाएगा, जिसको चढ़ने ही न दिया जाए उसकी क्या उम्मीद। आज तौबा कर ले आसान है, कल बड़ा सख्त मसला है। इस पुल पे से गुजरे बगैर किसी का गुजारा नहीं, उनको नीचे रोक लिया जाए, कह जाओ वापस जाओ और इसका इजाला करो, उससे माफी मांगो जिनकी गीबत की, क्योंकि गीबत तौबा से माफ नहीं होती, क्योंकि यह हुकूकुल इबाद में से है, उससे ही माफ करवानी पड़ेगी जिसकी गीबत की, ये तौबा से माफ नहीं होती, ये हुकूकुल इबाद में, उससे माफी मांगे जिसकी गीबत। ये इतना सख्त मसला है, और गीबत करने हाजी अब्दुल्लाह साहब का अमल कर अक्सर फरमाते ना, गीबत करने वाले की दुआओं की कुव्वत खत्म हो जाती है, दुआ की कबूलियत की, गीबत के साथ दुआएं कबूल नहीं हुआ क्योंकि कबीरा गुनाहों में से। और जैसे गीबत का करना गुनाह है ऐसी इसका सुनना भी गुनाह है, इसलिए शरीयत ने यह कहा कि जहां गीबत हो रही हो कोशिश करो उस मौजू को बदल दो, वो मौजू ना बदला जाए तो उस मजलिस से उठ के चले जाओ, ये मत सोचो कि ये बुरा मान जाएंगे, उसका सुनना भी ऐसे ही गुना जैसे कि करना गुना। हजरत रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबई है जिन्होंने सहाबा को देखा, वो ताबई वो एक मजलिस में गए तो वहां किसी की गीबत हो रही थी, तो मैं बहुत कोशिश की कि ये मौजू बदल जाए, लेकिन मौजू ना बदला तो वो उठ के उस मजलिस से बाहर चले गए जो शरीयत का हुक्म है, बाहर चले जाओ। काफी देर बाद वो वापस आए कि शायद वो मौजू बदल चुका होगा, तो लेकिन वो मौजू चल रहा था, वो मौजू चल रहा, तो उन्होंने सोचा कि हमज बैठे रहता हूं, लेकिन आदमी माहौल से मुतासर हो जाता है, कहे अब उससे दोबारा उठ के जाने की हिम्मत ना ही, वहां बैठा रहा हत्ता कि मेरी जबान से भी एक दो बोल गीबत के निकल गए। आदमी मजबूर हो जाए, एक माहौल ऐसा बनता है कि वो भी क्या उठता है, जब किसी पार्टी की किसी इलाके की किसी लोगों की कहीं बुराई हो रही है तो कोई खामोश नहीं बैठता, वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालता है। मिजाज मजलिस खत्म हो गई, मैं घर आ गया, जब रात थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक हबशी काला स्याह फाम आया, उसके हाथ में एक तश्त है और उसमें गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए, और वो कह रहे इसको खाओ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, क्योंकि वो गोश्त खंजीर का था, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान खंजीर नहीं खाया करता, तो उसने कहा नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, और वो जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसता रहा हत्ता कि उसकी बदबू और कड़वाहट से मेरी आंख खुल गई, आंख پوری تو میرے منہ میں اس کی بدبو اور کڑواہٹ موجود تھی. اور یہ حضرت رابی رضی اللہ تعالیٰ جو تابعی ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ مجھ سے ایسا گزرا کہ میں کوئی چیز کھاتا تو اس کی بدبو اور کڑواہٹ میرے منہ میں ہوتی اور میں سمجھ گیا کہ یہ ساری سزا ان دو بول غیبت کی ہے جو میری زبان سے نکلے. تو اللہ پاک کبھی کبھی ایسا دکھاتے ہیں, ہمیشہ نہیں دکھاتے. فضائل رمضان میں رکھا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے میں ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ دم لبوں پہ آ گیا کہ اب مری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پیش کیا گیا, کہ ایک پیالہ بھیجا کہ دیکھو اس میں طے کرے. جب طے کیا تو اس میں خون پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. کہا تم نے حلال چیز سے تو روزہ رکھا اور تم حرام میں مبتلا ہوئی کہ تم فلا فلا کی غیبت کر رہی ہیں.